मैंने कहा चेक क्यों, किस बात का देते हैं आप? तुमने कहा मेरे मन में आ गई। मैंने कहा इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और रुपया आवे ना आवे, रुपया आने की उम्मीद बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि रुपया आने की उम्मीद हो ना हो चेक मंगवा लें। वो तो इतना कह करके गए, वो रकम मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। दूसरे रात को हम लोगों ने बिचार, कुछ एक दो मित्र और थे, उनसे पूछा कि भाई क्या करें, रुपया उनसे मंगा लेना उनके प्रेम का दुरुपयोग करना है, ऐसी भी भावना मन में आई। तो बात हुई तो एक सज्जन ने, हमारे मित्र थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जी द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था, तो आप इसमें ना करने वाले कौन होते हैं। ये बात हुई। जिन सज्जन को घाटा लगा था, उन सज्जन ने क्या किया, उनसे जब यह मालूम हुई, उन्होंने हैंड नोट लिखा और मकानों के पट्टे साथ दे करके भेजे, ईमानदारी से। मैं जिन घाटा लगा था, दलाल ने नहीं, लक्ष्मी नारायण था भैगन झुंझुनू का था एक, हमने उसको भेजा। वो जा करके पट्टा उसने दिया उनको और हैंड नोट दिया, उन्होंने हैंड नोट को फाड़ दिया और पट्टे को लौटा करके उन्होंने एक चेक लिखा और चेक में रुपया नहीं भरा, ब्लैंक चेक लिख के सही करके सौंप दिया कि मैंने रुपया किसी, मैं तो देता ही नहीं, मैं रुपया किसी चीज को रख कर दूं, ये तो मैं किसी को देता ही नहीं, ये तो मेरे मन में आ गया, क्यों आ गया मैं नहीं जानता, मैं दे रहा हूं। भाई जी से कह दो कि जितना रुपया चाहिए उतनी रकम भर लें और निसंकोच बैंक से मंगवा लें, ये मैं पट्टा नहीं चाहता। पट्टा लौट आया, हैंड नोट फट गया, रुपया मंगा लिया गया, पेमेंट हो गया और दो महीने बाद उसने कमा लिए रुपए, रुपए उनको वापस हो गया ब्याज समेत। अब ये कोई पूछे तो उनको किसने भेजा मेरे पास, वो नहीं आते, कोई रोज आते ही नहीं थे, उन्होंने हरिराम का नाम क्यों लिया, क्या जरूरत थी। मैंने पढ़ा है एक बड़े अच्छे विश्वासी ईश्वर के हैं, उसका नाम है मिस्टर मुलर, इंग्लैंड में है, अभी हैं, जीवित हैं। उन्होंने, वो बड़े भगवत विश्वासी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, अपनी घटनाएं लिखी हैं। वो लिखते हैं एक घटना में कि एक जगह पर संतरा नहीं होता था, वो संतरा वहां से बहुत दूर दूर मिलता था कहीं। एक बुढ़िया बीमार थी, उसको किसी ने संतरा बताया, तो क्या हुआ, वो सज्जन दूसरे स्थान से आए और जहाज पर चढ़ने के लिए चले जा रहे थे जेठी पर, दोनों तरफ भिखारी बैठे थे, तो उसमें एक बुढ़िया भिखारिन बैठी थी, वो दोनों हाथों ऊपर किए हुए थी, अंधी थी, आंख नहीं, यूं हाथ किए बैठी थी। तो वो सज्जन वहां से एक निकले, दूर से आए हुए जहाज में बैठने जा रहे थे, उन्होंने देखा इसके हाथ ऊंचे हैं, उनके पास दो संतरे थे, वो लाए थे कहीं दूर से 500-400 कोस से, संतरे उन्होंने हाथ में डाल दिए। वो उस समय संतरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, ये भगवान कहीं संतरा आ जाए तो मेरा ठीक हो जाए, ये प्रार्थना तो करती अब, और भगवान ने 4 दिन पहले से संतरा वहां से दो भेजा, नहीं तो आज पहुंचता नहीं यहां पर। आगे से आगे एक घटना और सुनाऊंगा आपको, सच्ची घटना, इनसे विश्वास होता भगवान में। कलकत्ते वाले जानते होंगे सर कैलाश चंद्र बोस को, डॉक्टर कैलाश बाबू जानते होंगे लोग, ये कैलाश बाबू की अपनी कही हुई बात है। उनने कहा कि मेरी मां बीमार, बुढ़ी मां रात को मरना सन्न हो गई, अब मरे ये मां की दशा, تو میں ماں کے پاس بیٹھا اور میں نے ماں سے یوں ہی پوچھ لیا کہ ماں جی کوئی چیز کی من میں آپ کے ہو تو منگوا دیں. اب ماں جی نے تو عجب چیز کہہ دی. ماں جی نے کہہ دیا کہ بھائی انجیر ملتا تو کھا لیتی. انجیر یہ آج سے لگ بھگ 50-55 سال پہلے کی بات ہے. اس سمے ہوائی جہاز نہیں تھا. اس سمے بمبئی کلکتے ریل جانے آنے میں لگتے تھے 4 دن, اور کلکتے میں انجیر ملتا نہیں تھا. اب تو بہت ملتا ہے. تو انہوں نے آدمی بھیجا, کہا 1000 روپیہ لگ جائے کہیں سے انجیر ملے. انجیر نہیں ملا. تو کیلاش بابو نے کہا کہ میں اداس ہو گیا کہ میرے پاس اتنے روپے اور ماں مر رہی, اور ماں کی معمولی انتم اچھا وہ میں پوری نہیں کر سکا. ہے بھگوان. اب بولے میں رونے لگا, بھگوان کو یاد کرنے لگا. رات کے 11 بجے میں رو رہا یاد کر رہا بھگوان کو. رات کے 11 بجے نیچے سے ایک جمعدار نے آواز دی, ڈاکٹر بابو ڈاکٹر بابو. تو میں نے سوچا کہ کسی روگی کے یہاں کا کوئی بلاوا ہوگا. میں دکھی تھا تو میں نے جھنجھلا کے کہہ دیا کہ نہیں کھولیں گے کمار, ہماری ماں بیمار ہے. تو اس نے کہا نیچے سے کہ بابو جی ایک وشیش ضروری کام ہے. تو بولے میں نے یہ کہا کہ بھائی کوئی بیمار ہو کسی اور ڈاکٹر کو بلوا لو, میں نہیں آتا ابھی. اس نے کہا کہ بابو جی بیمار کوئی نہیں ہے, میں ایک چیز لے کے آیا ہوں. تب میں نے کمار کھولے تو وہاں پر پہلے ایک فارم تھا تربھون داس ہیرا چند کوئی تھا, ان کے پور بجو کی کوئی بات ہے. اب وہ فارم ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. تو کہا کہ بمبئی سے وہ سیٹھ آئے تھے, رات کو 8 بجے پہنچے. وہ سویرے وہ رنگون جا رہے تھے, ان کے پاس ایک انجیر کی ٹوکری تھی, بمبئی سے لائے تھے 4 دن پہلے. ڈاکٹر سے بڑا کام بڑا پریم تھا, تو سوچا کہ سویرے تو ہم 6 بجے یہاں سے چلے ہی جائیں گے, یہ رات کو ہی بھیج دیں. تو انجیر کی ٹوکری لے کر کے وہ جمع دار آیا تھا. جب اس نے مجھے انجیر کی ٹوکری دی تو بولے میرے ہردے میں تو مجھے تو بھگوان ملنے سے بڑھ کر آنند ہو گیا. اب میں نہیں سوچتا نہیں سمجھتا کہ یہ ویوستھا کیسے ہوئی. ماں مانگتی ہے 4 دن کے بعد, میں انجیر کے لیے روتا ہوں 4 دن کے بعد, اور انجیر وہاں سے چلتا 4 دن کے پہلے. ایک بار کی بات ہے, یہ وشواس کے بعد میں سناتا ہوں آپ کو. کرشن کانت مالوی, یہ مالوی جی کے بھتیجے, یہ الہ آباد جیل سے, جیل میں تھے راجنیتک کارنوں سے, جیل سے ٹرانسفر ہو کر یہ بستی جا رہے. تو میرا ان کے پاس تار آیا کہ ہم ٹرانسفر ہو کے بستی جا رہے ہیں, اور ہمارے لیے کھانے کا سامان آپ ریل پہ بھیج دیجیے. میرے پاس تار آیا. تو کیا ہوا کہ تار آیا پریس میں. اب تو ہمارے پریس سے اور بگیچے میں ٹیلی فون ہے. اب وہاں پر سواری ملتی, اس سمے میں تھا اس بگیچے میں نہیں تھا, گورکھناتھ سے پر دوسرا بگیچہ وہاں رہتا تھا. وہاں نہ سواری ملے نہ ٹیلی فون. پریس والوں نے کیا بھول کی کہ تار کو پڑھ کر کے میرے پاس بھیج دیا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ویوستھا کر کے بھیج دیتے. اب گاڑی آنے میں کل 15 منٹ کی دیر, اور میرے پاس تار لے کے آدمی آیا. تو مجھے پریس والوں پر بڑا غصہ آیا. اپنے من کی بات کہتا ہوں کہ ایسے بے سمجھ ہیں کہ میرے پاس تار بھیج دیا. ارے میرے پاس کیا کوئی بنائی چیز رکھی ہے, اور کوئی سواری نہیں, میرے پاس سامان نہیں بنا ہوا, گاڑی آ رہی ہے. تو اتنے میں دیکھتا ہوں, اتنے میں, میں نے کوئی پرارتھنا وارتھنا نہیں کی, اتنے میں دیکھتا ہوں کہ 2 اکے آئے, اور 2 اکوں پر مٹھائی پوڑی ساگ پھل سب بھرے ہوئے. और ये कहा कि बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद जी के यहाँ कोई आज प्रसाद था या क्या था, तो उन्होंने भेजा है, वही इक्के और वही सामान जो का तुम मैंने आदमी साथ दे के भेज दिया स्टेशन। गाड़ी 20 मिनट लेट आई और कृष्णकांत जी अकेले नहीं थे, वो 16 आदमी थे, 16 आदमियों ने मजे में खा लिया, टाइम पर पहुंच गए। अब ये किसने भिजवाया बताइए, मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मेरे मन की कल्पना नहीं थी, मैंने मन में सोचा नहीं था। अगर वो एक घंटे बाद आता इक्का तो काम नहीं आता, और पहले आ गया होता उसे हम बरता देते तो काम नहीं आता। इक्के पर आया, साथ लेकर के आया और गाड़ी लेट हो गई, सबने खा लिया। तो ये मेरे कहने का मतलब ये कि हम लोग जो है ना ये अविश्वासी हैं, हमें जो मिलना है और हमें जो मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था हमारे लिए पहले से पहले हुई रखी है। इसीलिए तो सकाम कर्म करने वाले मूर्ख होते हैं। अरे जो मिलना है, जैसे दुख अपने आप आता है वैसे सुख भी अपने आप आता है, और उसकी व्यवस्था पहले से हुई रखी है। उन्हीं मुलर साहब ने ये बात लिखी, वो ठीक ऐसी ही बात है इसी तरह की भोजन की। मुलर साहब के अनाथाश्रम में 250 अनाथ, अब एक दिन उनके पास अनाज नहीं, रसोई नहीं बनी, तो 10 बजे घंटी बजती थी अनाथों के लिए आखिरी, तो 10 बजे आके सब बैठ जाते थे खाने को। पहली घंटी बजी थी 9:45 में, तो रसोईया आया, उसने कहा कि आज तो कुछ बना बनाया है नहीं, हम क्या करें। तो मुरल ने कहा घंटी बजा दो। रसोइये के मन में आया घंटी बजा दें खाएंगे क्या, घंटी बजा दी। जब 5 मिनट कम रहे तो दूसरी घंटी बजती थी, तब फिर आया, बोले अब क्या करूं, अब तो 5 मिनट बाकी है, बोले बजाओ घंटी। घंटी बज गई, अब आखिरी घंटी बजनी है 10 बजे। 10 बजे वो फिर आया, बोले अब क्या करूं, तो कहा पूछते क्या हो, घंटी बजाओ। उसने सोचा कि कैसी कि साहब का मन दिमाग खराब हो गया है कि ये घंटी बजा दूंगा मैं और तमाम वो अनाथ विद्यार्थी 250 के बैठ जाएंगे, उसको उनको मैं परोसूंगा क्या। बस घंटी बजी, उसने झुंझला के बजाई, बोले आज देखना मुरल साहब को इनको क्या खाने को देंगे। घंटी बजी, अनाथ आके बैठे और गाड़ियों पर सामान आ गया। उसने ये बताया कि अमुक होटल में पार्टी थी आज, वो पार्टी किसी कारण से नहीं हुई, तो हमारे मालिक ने ये कहा कि भाई 10 बजे से पहले ले जाओ वहां पर, तो काम आ जाए। तो सारा सामान हम लेकर के आए हैं, वो जो का तो सामान परस दिया गया, सब ने खा लिया। बताइए ये व्यवस्था किसने की, हमने की, उसने की, मुलर साहब ने की। तो अगर हम भगवान पर विश्वास करें, ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में कई घटी हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना बता दिया कि मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं, बहुतों घटी हैं। सब क्या आप लोग घटी होंगी, हम लोग देखते नहीं हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने की, कामना करने की आवश्यकता नहीं। अगर अब भगवान देखते हैं कि इसको अमुक चीज देने में इसका लाभ है, तो पैर से व्यवस्था करके दे देंगे। अगर भगवान देखेंगे कि न देने में लाभ है, इसका लाभ है, इसके बेइज्जती में इसका लाभ है, तो नहीं देंगे और दूर से हंसते हुए देखते रहेंगे कि इसकी दवा ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। वो दवा देते हैं भगवान, कहीं वैसी कहीं वैसी। तो इसलिए भगवान धन भी देते हैं, भगवान आके नौकर का काम भी करते हैं और भगवान धन को हर भी लेते हैं। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, कृपा पर विश्वास करें। अब तीसरा प्रश्न है, सांप और बाघ के मुंह में भी भगवान की कृपा के दर्शन कैसे करें। यही बात भगवान ने कही है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। ये भगवान ने कहा कि मौत मैं हूं। अरे सांप और बाघ के मुंह में क्या है, मौत ही तो है, वो खा रहे हैं ना, तो ये समझे कि सांप और बाघ मुझे खा के समाप्त कर देंगे इस शरीर को, और मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। बड़ी कृपा भगवान की कि मुझे अपने धाम में बुला रहे हैं। ये भावना अगर कर ले तो कृपा समझी कि नहीं समझी। अरे सांप और बाघ का मुंह तो मौत ही है ना। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाथ छिपा लो तुम मुंह अपना, चाहे अति अंधियारे में मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हानि दुख अपमान घोर यति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में, अथवा सब तुम्हारे ही वेश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी जब, तब फिर मैं किस लिए डरूं। मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। मरण साज सज यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी दुख वेश धारण करना, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। हे प्रभु, आप बाघ के मुंह में बाघ का मुंह बन करके आए हैं, आप सांप का जहर बन करके आए। ये प्रहलाद ने कही, जब सांपों ने डसा तब प्रहलाद ने कहा ये कि सांप में हमारे भगवान हैं। ये चीज तो वहां भगवान की कृपा इस प्रकार माने। अच्छा, भगवान के लिए प्राण छटपटाने क्यों कर लगे, उनके एकांत लालसा कैसे हुई, यह बड़ा सुंदर प्रश्न है। सबके जीवन में यही बात आनी चाहिए। ये बात अगर आपके मन में ठीक प्रकट हो गई है तो आप बड़े भाग्यवान हैं। भगवान के लिए प्राणों में छटपटाहट कैसे पैदा हो, और भगवान के लिए एकांत लालसा कैसे हो, ये प्रश्न ही भगवत कृपा के सूचक हैं। अगर सच्ची बात है तो हमारे तो मनों में ये प्रश्न आता नहीं, हम तो ये प्रश्न रात दिन देखते हैं और मानते करते हैं कि ये भगवान कैसे हमारे संसार में हमारा काम तुम पूरा कर दिया करो, हमारा योगक्षेम खूब निभे, किस प्रकार से हमें जगत में सुख मिले, किस प्रकार से जगत की वस्तुएं हमारे पास रहें, किस प्रकार से और आ जाएं और बढ़ जाएं और मिल जाएं, हम तो यही चाह करते हैं। तो ये प्रश्न अगर उत्पन्न किसी के मन में हो जाए और वो अगर इस बात में संलग्न हो जाए कि मेरे प्राण हे भगवान कब छटपटाएंगे आपको मिलने के लिए, ये साधन है, तो भगवान क्या करेंगे, भगवान देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि भाई ये जो लिखता है कहता है ये छटपटाहट ठीक चाहता है क्या, मन में ये बीमारी चाहता है क्या, ये बीमारी है। भगवान के अमिलन का जो ताप है, भगवान के न मिलने की जो वेदना है, ये वेदना सबसे बड़ी वेदना है, और ये वेदना जिसके हृदय में जागृत हो जाती है वो महान भाग्यवान है। ये हमारे बल्लभ संप्रदाय के महात्मा लोग तो कहते हैं कि भगवान से मिलने के लिए ताप की आवश्यकता है, जब तक हृदय में ताप नहीं होगा, भगवान के न मिलने की दुख की आग जल न उठेगी, और वो आग भगवान के मिलन की आग जब हृदय की सारी कामनाओं को वासनाओं को बाहरी सारी ममताओं को फूंक न डालेगी, तब तक भगवान नहीं मिलते। सच्ची बात है, सारी कामना वासना सारा ममत्व ये भगवान को मिलने की कामना अगर खा जाए, आग लग जाए और ये आग अगर सबको स्वाहा कर दे। उस दिन मैंने कहा था कड़ी चीज तो है, भगवान का प्रेम उन्हीं को प्राप्त होता है कि जो सब कुछ जलाकर उसकी खाक में, उसकी खाक को अंगों में रंगों अंग में रमाकर उस खाक पर नाचा करते हैं, उनको भगवान का प्रेम मिलता है। तो जलाना नहीं पड़ता कुछ भी, जो अपनापन जो स्पर्श है उसको जला देना पड़ता है। ये जो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इस मेरे में आग लग जाती है, फिर मेरा न कोई रहे और न मेरा बनाने की चाह रहे। हम लोगों की तो ये बात है, हम लोग सारे जगत को खा करके भी फिर भी चाहते हैं और मिल जाए, और मिल जाए। महाशनो महापापमा दिन वरिणम, भगवान ने कहा कि जो कामना है ये महाशन है, इसको खाते खाते इसका कभी पेट भरता ही नहीं। इसलिए ये चाह आपकी बड़ी उत्तम है, और ये चाह अगर है, अगर है तो भगवान इस चाह को पूरी करने के लिए बाध्य है। पर चाह भगवान देखेंगे और परखेंगे, चाह होगी तो पूरी कर देंगे। और बीच में अगर कहीं धन की चाह हो गई, बीच में अगर कहीं विपत्ति से छूटने की चाह हो गई, बीच में अगर उसने उसके लिए कहीं चिट्ठी उठी डालने की, लॉटरी फेंकने की चाह हो गई जैसा लिखा था आपने हमको, तब तो भैया फिर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान अकिंचन वित्त हैं, अकिंचन नमो अकिंचन वित्ताय, जो अपने पास कुछ नहीं रखता उसके भगवान हो जाते हैं। और भगवान आश्चर्य कर्मणे हैं, भगवान के नाम आश्चर्य कर्मणे, जो काम कोई नहीं कर सकता, जिसको देख के मालूम होता है कि जादू हो गया, तिलस्म हो गया, क्या हो गया, ऐसा काम भगवान कर देते हैं जादू की तरह से। परंतु भगवान करते हैं कब, जब एकमात्र भगवान पर ही मनुष्य निर्भर करता है, उनके लिए छटपटाता है, तब उसका भार वो ले लेते हैं। ये इसका उत्तर है। कि काम के पत्र में आपने लिखा था कि जो संसार में पड़े हुए महान दुख पाते रहते हैं, संशय भ्रम रूपी हजारों बिच्छू जिनको काटते रहते हैं, उनके सब प्रकार के दुख संत संत मिला देते हैं। ये बात तो ठीक है, संत लोग मिला देते, संत लोग जो हैं वो दूर कर देते हैं उन दुखों को। तो इसमें यही बात है जो हमने कही थी पहले, आपको संत मिल जाए और मिलने पर अगर संत पर विश्वास हो जाए और संत के को सब कुछ अपना दे दिया जाए, धनवन नहीं, जो संत संत शिष्य से धन स्त्री मान इत्यादि मांगते हैं, वहां तो जरा संदेह कर लेना चाहिए। यद्यपि संत की सेवा में अगर हमारा धन लग जाए तो हमारे धन की सार्थकता है, परंतु मांगने वाले जो संत हैं, अभी आज दोपहर कोई एक दो भाई आए थे मेरे पास, कोई विद्यार्थी थे, उन्होंने ये बताया कि भाई एक कहीं संत आए और उन संत ने सबको बैठा लिया, सबको जल देते गए और कहते तुम हमारे चेले, तुम चेले तो तुम्हारा पाप हमने लिया, तुम चेले तुम्हारा पाप हमने, तुम चेले हमारा तुम्हारा पाप हमने लिया, और फिर उनसे सब कुछ मांगने लगे वो, और गांव वाले सब तो बोले उनकी कोपिन धो धो करके लोग पीने लगे। ये जो अनाचार है ना, इसे तो सावधान रहें। पर संत यदि कोई हैं और संत अगर मिल गए और संत से यदि आपका संपर्क हो गया और विश्वास हो गया, तो आपके सारी अशांति के जो कारण हैं वो दूर हो जाएंगे। धन चाहे न मिले, पर धन मिलने की जो आपके मन में जलन है वो दूर हो जाएगी, बात शांति से। अब ये लिखा आपने अंतिम बार, उसका उत्तर मैं देता हूँ साफ तौर पर। आपने लिखा कि मैं आपको संत मान करके आपकी शरण में आऊँ, ये सर्वथा झूठ है, इस वहम को आप निकाल दीजिए। मैं सोगन खा के कहता हूं कि मैं संत नहीं हूं, मेरे में इतने दुर्गुण हैं, इतने दोष हैं जो शायद आप लोगों में नहीं होंगे। ये तो भगवान की कृपा है कि वो मुझे निभा रहे हैं। मुझे संत मानने वालों को मैं सावधान कर देता हूं कि मुझे अगर वो संत मानेंगे तो भूल में रहेंगे, भ्रम में रहेंगे। कमजोर प्राणी हूं मैं, मेरे जीवन में मेरे क्या क्या दोष हैं, क्या क्या मेरे कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। मैं अपनी दुर्बलताओं को देखकर, कमजोरियों को देखकर इस साफ तौर से घोषणा कर देना चाहता हूं कि मुझे संत मानने वाले सर्वथा सर्वथा भूल में हैं और उनको नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल संत कोई होंगे, संत जो होते हैं उनको मानना चाहिए और भगवान को मानना चाहिए। मैं किसी का कोई संत बने के नाते भला नहीं कर सकता, संत बना मेरे में है ही नहीं। सलाह दूंगा मित्रता के नाते, बता दूंगा, पर बिल्कुल बिल्कुल हरगिज संत नहीं, महापुरुष नहीं, महात्मा नहीं, कुछ नहीं, साधारण प्राणी कमजोरियों से भरा हुआ। आपको महाराज क्या पता है मेरे मन में क्या क्या दोष आते हैं, क्या क्या दोष थे मेरे मन में, आप कोई नहीं जानते। मैं सत्य कहता हूं, इसलिए संत मुझको तो कोई मानता हो, आपने ये लिखा नहीं तो मैं नहीं कहता इतनी बात, ये कहना भी अपना विज्ञापन करना है। और इस कहने में भी शायद वासना मन में हो कि ये कितना अच्छा आदमी है जो अपने को संत नहीं मानने कहता, इसको संत मानना चाहिए, ये वासना मन में रह सकती है। अपने अपनी बड़ाई का विरोध करने में भी बड़ाई की इच्छा रह सकती है, वो तो अंतर्यामी जानते हैं मेरे मन में क्या है, बड़ाई की इच्छा है या नहीं, पर रह सकती है, अंतर्यामी जानते हैं, हो सकती है। तो इसलिए ये बात आपने लिखी इसलिए कह दी, लेकिन ये सत्य बात है कि अगर संत है कोई, और अगर संत का कोई ठीक विश्वासी है, और अगर संत को संत ठीक मानता है, और अगर उसके संपर्क में आ गया है, तो उसके दुखों का नाश अवश्य होना चाहिए। ये शास्त्र के वचन है। ये स्कंद पुराण में आया, एक कथा आई कि स्कंद के संत किसी के पास खड़े हुए थे और उनके सामने वो मर गया। संत ने उसके हाथ, अपने हाथ से उसकी चिता जला दी, उसका उद्धार हो गया। तो संत का मिलन, संत का दर्शन, संत की प्राप्ति, ये अमोघ है, हैं? अमोघ है, दुर्लभो गम्यो मोघश्च। नारद जी का सूत्र है कि संत का प्राप्त होना दुर्लभ, बिन हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत का प्राप्त होना भगवान की कृपा से होता है, यो संत गई गली नहीं फिरते, और फिरते हैं तो अगम्य हमें पहचानते नहीं हैं। संत का मिलना मुश्किल और मिलने पर संत को पहचान लेना बड़ा मुश्किल। हम अपने कांटे पर संत को जब तोलने जाएंगे तो संत नहीं तोड़ेगा, लेकिन संत का अगर मिलन हो गया वास्तव में तो अमोघ है। ये नारद जी के वचन है, मेरे वचन नहीं। दुर्लभो गम्यो अमोघश्च, संत की प्राप्ति दुर्लभ है और संत की प्राप्ति अगम्य है, पहचान में नहीं आती, और संत की प्राप्ति अमोघ है, कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब इसका कोई कुछ भी अर्थ लगावे, कोई ये माने कि भगवत प्राप्ति के दिन सब कुछ व्यर्थ ही है, तो वो तो अर्थ लगावेगा कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जो कुछ भी प्राप्त होने कोई मान लेता कि व्यर्थ तो नहीं, कुछ तो मिल गया, वैसा अर्थ लगावे, उसके लिए ये अर्थ हो सकता है कि भाई संत के मिलने से कुछ अंतकरण की शुद्धि हो जाएगी, कुछ मिल जाएगा, कुछ भाव अच्छा हो जाएगा। ये अपने अपने भाव से अर्थ लगाने, वो अर्थ भी लगाओ तभी हज नहीं है। तो संत मिलन का फल तो ये अमोघ, इसमें कोई संदेह नहीं। ये आपके पांचों प्रश्नों का उत्तर है। तो ये कौन कहता है कि आप झूठ कहते हैं? वह बड़ी अच्छी बात है।
सवा लाख घरों के अंदर दोस्तों में कल्याण जाना, लाखों
ये मेरे मन की तो मैं जानता हूँ ना, आपको क्या पता है? मैं गीता का प्रचार करता हूँ या अपना प्रचार करता हूँ, ये कौन जानते हैं आप?
रखिए ना,
गीता का प्रचार करता हूँ
तो आप अपने मन में रखिए।
آپ کیجیے مت دیکھیے ایسی بات ہے دیکھیے ایسی بات ہے کہ گیتا کا جو پرچار کرتا ہے اس کے لیے ایسی بات ہے پر گیتا کے پرچار کے نام پر میں اگر اپنا پرچار کرتا ہوں تو آپ کیا پتا ہے یہ میں اور کہتا ہوں آپ سے آج کل بہت جگہ اور بہت ستھانوں میں بھگوان کے نام پر ویکتتو کا پرچار ہوتا ہے بھگوان کی پوجا کے نام پر اپنی پوجا کی چاہ ہوتی ہے اپنی پوجا پرکارانتر سے کروائی جاتی ہے تو آپ کو کیا پتا میرے من کا کیا بھاو ہے آپ کا کہنا ٹھیک ہے